हमने पिछले से पिछले हफ्ते हम लोग ने ये मौजू
जी
रखा था और इस पे एक गुफ्तगू की थी कि वालदैन किस तरह से जो है तरबियत करते हैं कुरान के साए में औला बच्चों की, और किन किन चीज़ों का वो असर अंदाज होती है वो तरबियत, यानी मुआशरे में खसूसी तौर पर। हमने झूठ के बारे में बात की थी और कुछ चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, और मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं।
मैंने इस मौजू पे जो जितना सोचा
जी
तो जो चीज़ इस वक्त मौजूदा माशरे में और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, यानी हर माशरे में ये मुश्किल मौजूद है
जी
और ख़ुसूसन अपने बरसग़ीर में ये मुश्किल मुसलमानों में भी चूँकि बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है और माहौल इस टाइप का है कि आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते,
जी
तो इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। वो ये है कि तहज़ीब, लिहाज और शर्म हया,
सही बात है। इसकी आजकल आप से बिल्कुल सही कह रही हैं, आजकल हमें भी देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ कुछ कम हो गई है।
कम कुछ कम की बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत हमारी तहसीब को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मगरिब की तरफ से और दुश्मनान इस्लाम की तरफ से दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और यानी जिसे कहते हैं एशिया की तहजीब को असरअंदाज मगरिब कर
जी
रहा है, ये तो बहुत पहले से चला रहा था जो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे यहाँ जिन चीज़ों ने काम बहुत ज़्यादा ख़राब किया है हमारे यहाँ, यानी मेरा
जी
मकसद वही हमारा जो मुखातिब
जी जी
ममालिक
जी
हैं वहाँ, वो चीज़ें जो हैं वो टेलीविज़न और टेलीविज़न से भी कहीं ज़्यादा फिल्मों ने बहुत ज़्यादा यानी दूर ले गए हैं वो, और बहुत ज़्यादा मगरिब की मगरिबी तहजीब के नज़दीक। और
जी
दरअसल मगरिब की भी जो असल तहजीब है वो आप उस ज़माने की फिल्में देखें, उस ज़माने की तस्वीरें देखें आप, तो उसमें यानी ये तहजीबी का आलम नहीं होता था। जो लिबास की
जी
कमी, जो यानी हालात इस वक्त हैं वो पहले मगरिब में भी नहीं होते थे।
जी
तो अब किस सियासत के तहत मगरिब की तहजीब को पहले मुतासर किया गया और वहाँ पर बिल्कुल जो तहजीब की और जो जैसे कहते हैं माशरे की और जो आज़ादी की सबसे बढ़ के जो तारीफ थी, जो डेफिनेशन हुआ करती थी, वो
जी
बदली गई और उसके बाद उसको ही लाके एशिया के में फैलाया गया और एशिया
जी
के मुख्तलिफ ममालिक पर असरअंदाज हुई है ये तहजीब। आप जापान और दूसरी जगहों पे भी, आप कहीं पे भी बाहर जाओ तो जो वहाँ की लड़कियाँ लड़के जिस किस्म के
जी
लिबास पहने हुए मिलते हैं
वो
उससे पता
उनके
चलता है
हैं
कि कितनी मगरबी तहजीब से मुतासिर हैं ये लोग, और
जी
वही तहजीब हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मगरबी तहजीब, उनके सोचने का अंदाज और उन्होंने जो कवानीन बना दिए हैं मुआशरे के लिए, वो
और वो
मैं
ये अच्छे समझे
तो
जाते हैं
उसमें हाँ वो अच्छा समझा जाता है। तो इस्लाम जो है उसने इन चीज़ों को, हर चीज़ को, सबसे बड़ी चीज़ तो इस्लाम में जो हर कहना चाहिए कि मैदान के लिए जो उसने जिस चीज़ का ख्याल रखा है
जी
और जिस चीज़ पर ताकीद की है वो है एतदाल।
जी
एतदाल कि आप हर चीज़ में तवाज़ुन कायम रहे,
ना किसी
अपनी
चीज
हद
में
से ना कोई चीज़ कम होने
ना
पाए
कोई ज्यादा
और ना कोई चीज़ ज़्यादा होने पाए। तो इसके पेश नज़र आप सारी चीज़ों को, सारे मसाइल को अगर देखें तो इस्लाम ने जिस तरह उन्हें काबू किया है उनमें से ये मसला भी है कि जो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं शर्मो हया या लिहाज
जी
करना या इन चीज़ों का जो मसला है वो भी उसी के अंदर है। मुझे नहीं पता आपके पास अभी कितना वक्त है कि मैं असल मौजू को शुरू करूँ या आप अभी वक्त
मेरे ख्याल से
चाहेंगे।
हमारे पास अभी एक दो मिनट
मिनट
होंगे
है
आराम से। जी
तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम ने जिन चीज़ों का ख्याल रखा है उनमें सबसे बड़ी चीज़ है एतदाल।
जी
हर चीज़ में एतदाल की बात कही गई है, उसमें लिबास पहनने में भी, उसमें हिजाब करने में भी, उसमें जिसे कहते हैं कहाँ पे कम हिजाब किया जाए, कहाँ पे यानी ज़्यादा, क्योंकि ये सारी चीज़ें माशरे को भी मुतासिर करती हैं, घर और ख़ानदान और शख्स के अलावा।
जी
एक ख़ास बात ये होती है तो उसमें से जो शर्म हया की चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप महसूस करते हैं। शर्म ऐसी चीज़ है जो आप दूसरे की बनिस्बत देखते हैं कि कैसा है, समझ रहे हैं?
जी जी जी
यानी कहीं पर आप शर्म को समझा नहीं सकते किसी को कि शर्म क्या चीज़ है।
जी
अगर मैं एक मिसाल देती चलूं कि मैंने बहुत अरसा पहले किसी हिंदुस्तान की किसी फिल्मी हस्ती की बात सुनी थी। उसकी शादी हुई थी किसी ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेट प्लेयर के साथ,
अच्छा
तो एक दो साल के बाद जब वो वहाँ से वापस आई तो उसने जो इंटरव्यू दिया था वो इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें लोगों ने पूछा कि आपने बिल्कुल एक अलग सकाफत में, एक अलग कल्चर में शादी की है, वहाँ की रवायात और आपके बिल्कुल फ़र्क हैं, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तो उसने कहा नहीं, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ उनको समझाना वो शर्म है।
कि उनके लिहाज से मेरे ख्याल से जो लोग लोगों का नजरिया फर्क करते हैं
लोग, यानी वो समझ कहने लगी कि मसल उसने जो बताया, उसने कहा जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई कि लोगों के लिए मैं साड़ी पहनती थी और लोगों के लिए वहां साड़ी बड़ी अजीब चीज थी कि कैसे पहनी जाती है, जान नहीं पहनी जाती, वहां लोग बिल्कुल नहीं जानते, तो कहने कैसी पहनी जाती है। तो अक्सर उनके दोस्त और उनकी बीवियां वगैरह सवाल करते थे, तो कहने मेरे शोहर कहते थे कि तुम आके इनको सामने पहन के दिखा दो। तो कहने कि मैं उनको आज तक 2 साल हो गए हैं शादी के, मैं ये चीज नहीं समझा चल सकी कि ये हया की बात है, ये शर्म की बात है। तो शर्म उस जज्बे का नाम है जो माहौल से इंसान सीखता है या माहौल उसको सिखाता है,
जिस माहौल में रहता है उससे
वो लेता है
जी।
वरना उसको अलग से आप कोई चीज समझाने की बात करें तो वो आप कहेगा कि इसमें क्या हर्ज है, मतलब
जी,
अगर कि हम कोई तुमसे मतलब यानी बरहना होने को तो नहीं कह रहे हैं, ये जो बुरी बात है, और तुम आके साड़ी पहन के इनको दिखा दो
जी।
ये चीज तो वो यानी ये मैंने मिसाल के तौर पे अर्ज किया। तो इसलिए हमें मैंने इस्लाम ने जिस चीज पर शर्म और हया पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया और लिहाज और तहजीब पर जो जोर दिया, तो जहां दूसरी चीजें सिखाई गई वहां पर इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आप अपने घर के माहौल में शर्म और हया को भी एक ऐसा मौजू बनाए जो सबके लिए आम हो और जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें और सीख सकें।
आपने बताया शर्म और हया और लिहाज, तो कहाँ से शुरू किया जाए बच्चों को सिखाना ये?
देखिए सबसे पहले चीज तो ये होती है कि शर्म यानी जिसे हम लिहाज और अदब कहते हैं वहां से बात शुरू होती है
जी।
कि बुजुर्गों का मतलब पहले जमाने में हम अपनी वालदा वगैरह को देखते थे कि जब कोई भी उनके बुजुर्ग आते तो अगर सर पर उनके दुपट्टा नहीं है तो फौरन सर पे दुपट्टा लेती, जबकि वो लोग महरम होते थे, भाई थे उनके या कोई ऐसे मामू चाचा, लिहाज था। यहाँ से बात शुरू, तो बच्चा खुद ब खुद बगैर देखे मतलब बगैर पूछे हुए और उसको ये होता है कि ये किया जाता है, ये काम किया जाता है, इससे तो बात शुरू होती है। उसके अलावा मर्द हजरात जैसे घर में आए तो चाहे अपने घर में ही दाखिल हो लेकिन फिर भी कोई एक खिकार के गला साफ करके कोई सलाम करके कोई मतलब बता दिया कि हम आ रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा है कि जो उनसे हिजाब करता है जो उनसे पर्दा करता है तो वो और लोग संभल के बैठ गए अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है वो आ रहा है, तो ये सारी चीजें बच्चे खुद ब खुद सीख रहे होते थे, ये लिहाज वाली बात होती
थी।
इससे बढ़ के जब आगे मसला आता है तो फिर आता है लिबास पर। लिबास में ये होता है कि मैंने अपने मासूमीन में से किसी इमाम अलैहिस्सलाम के उस पर देखा, गालिबन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मसला था कि आप कहीं तशरीफ ले गए तो वहाँ के ऊपर कोई आपके सहाबी आए, वो अपनी एक बच्ची के साथ आए, वो बच्ची 3 साल की थी लेकिन लिबास कुछ उसका ज़्यादा खुला हुआ नामुनासिब था यानी, तो इमाम ने कहा उससे कहा कि मतलब इस पर वाजिब नहीं है, जाहिर अभी बहुत छोटी है लेकिन मुनासिब लिबास पहनाया करो।
अच्छा,
तो है क्या कि घर में अगर माहौल नामुनासिब लिबास का है यानी फैशन जो आजकल चल रहा है मॉडर्न, तो अगर ख्वातीन अगर उसको मतलब वैसे ही रहना चाहती हैं उसमें ज़्यादा मतलब आसानी से महसूस करती हैं कि हम रह सकते हैं और ज़्यादा बेहतर है तो वो ज़रूर करें, लेकिन अगर उन्होंने उस ये ख्याल रखा कि जब तक घर में महरम है शख्स, शौहर है या भाई है वो है, इसका लिहाज रखा तो बच्चा ये ज़रूर देखेगा कि माँ ने अगर अभी स्लीवलेस पहना हुआ है या ऐसा कोई लिबास पहना हुआ है जिससे उसका साड़ी पहनी हुई है इस तरह की कि नुमाया है बदन थोड़ा, तो लेकिन जब फना आया जब कोई दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर कोई कोट पहन लिया या चादर पहनी या कुछ इस तरह का किया, तो ये चीज़ें बताने की फिर नहीं होती कि डांट फटकार की, बच्चा खुद सीखता है कि ये किया जाता है। यानी अगर मॉडर्न लिबास भी घर में जो आजकल बिल्कुल नए फैशन के हैं वो पहने हुए हैं तो उसमें अगर ये लिहाज कर लिया गया तो बच्चे को पता है कि ये हमारे अपने अब्बा के सामने था, हमारे मामू के सामने था, हमारे भाई के सामने, ये गैरों गैर जब कोई आता है तो ये नहीं करते, तो ये उसने खुद ब खुद सीखा
जी।
अर्ज करती चलूँ कि इस लिबास का जो जब बच्चा ये सीख के बड़ा होता है वो लड़की हो या लड़का दोनों
जी, ये भी चीज़ अहम है क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि जो हया है और ये जो लिहाज है ये लड़कियों में होनी चाहिए, लड़कियों को नजर लड़कों को नजरअंदाज
नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में भी जो नजरें अपनी आंखें बंद करो मतलब नजरें झुकाओ ना देखो उस तरफ, लड़कों के लिए भी है
लड़कियों के लिए
और लड़कियों और मर्दों पर ज्यादा सख्ती है, मर्दों के लिए का हिजाब इस लिहाज से ज्यादा सख्त है कि उन्हें एक नजर अगर पड़ी तो फौरन नजर पलट के देखना तो छोड़ो, नजर फौरन हटानी है वहां से। तो ये चीज बच्चे घर से सीखते हैं, इसी तरह लिबास में भी है। कि मर्दों के लिबास में भी रोजाना, अभी तक तो जो हम देखते थे कि उनमें मर्द तो पूरे सूट और बूट और कॉलर और हर चीज के साथ में पार्टियों में, जो गैर मुल्की फिल्मों में, और औरतें जो थी वो कम से कम लिबास में
जी
होती थी। अब जो है वो मर्दों की तरफ से भी, अब जब आप आए बाजार में जाके देखें तो वो मर्दों के लिबास भी अलग ऐसे होते जा रहे हैं कि जो जैसे कहना चाहिए कि वो बरहंगी की तरफ जा रहे हैं,
जा
वो
रहे
भी
जी।
तो ऐसे में मतलब बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि अगर उसने घर में जैसे बरमूदा कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो टंगे पैंट या लंबी नेकरे जो भी है आप कहें कि वो जो पहनते हैं, तो उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए
कि मतलब किसके
सामने पहने और किसके सामने ना पहने। होना तो ये चाहिए कि मतलब बहन और माँ और इन के सामने भी जिसे कहते हैं कि एक लिहाज रखा जाए, लेकिन बहरहाल अगर पहनते हैं तो इसका जरूर ख्याल रखें कि ये नामहरम के सामने मर्द भी नहीं पहने और नामहरम के सामने औरतें भी नहीं पहने, क्योंकि ये सख्ती से इस्लाम में इस पर रोक लगाई गई है। और बहुत ज्यादा जो मना किया गया है वो इसी के लिए कि घर के माहौल के अलावा माशरा भी इससे खराब होता है और माशरे में इससे बदमनी फैलती है। लोग कहते हैं ये हमारी जाती आज़ादी है, लेकिन वो जाती आज़ादी नहीं होती। जाती आज़ादी आपने लिबास जहाँ ऐसा पहना वहाँ आपने अपनी आज़ादी कर दी, दूसरे की नज़रों की आज़ादी जो है वो खत्म हो जाती है।
हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से जो है बदअमनी बढ़ती चली जा रही है और घर में हम किस तरह से लिहाज और अदब और हमारी जो हया होती है वो इस बदअमनी पर जो है असरअंदाज हो रही है।
काबू जी, देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने अभी कहा कि लिबास के बारे में कि एक तो ये कि गुफ्तगू घर में बड़ों का अदब और छोटों का लिहाज कैसे किया जाए, गैर और अपने यानी महरम और नामहरम इसका फ़र्क अगर घर में मौजूद रहे तो ये बहुत मदद करता है सिलसिले में। यानी आप कोई नामहरम आया, आपका चाचाजात भाई है, मामूजात भाई है, इस तरह के रिश्ते हैं जो महरम नहीं है, आप उनसे भी बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करती हैं, लेकिन उस बेतकल्लुफ़ी में भी एक
तकल्लुफ़ होता है,
एक फासला होना चाहिए, समझ रहे। और उसी तरह लिबास और पहनावे में भी उनके सामने और महरमों के सामने फ़र्क होना चाहिए।
और जो हमारे यानी उसके साथ कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में चचाजात भाई और मामूजात भाई इन सब में माना ही नहीं जाता, उन्हें महरम ही समझा जाता है।
महरम तो उसमें इसी वजह से ये चीज होती है कि ऐसी चीजें फिर रुकती नहीं है, फिर वो मामू का लड़का है या फिर चचा का लड़का है या कोई भी कजिन है और उसके बाद उसके दोस्त हैं, तो भाई वो भी तो फिर कजिन नहीं हुए, उनके दोस्त भाई हैं। तो ये सारी चीजें इससे ये होता है कि ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता हर एक बुरा है यार, बल्कि आपने एक जो तरीका बनाया हुआ है, एक उसूल आपके घर का है, उस उसूल को आपके बच्चे देख के उस पर चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। अब कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले की बात है कि दिल्ली पुलिस के चीफ ने खबरों में बहुत आया था, उसने कहा था कि अगर लड़कियां और औरतें अपने लिबास को कंट्रोल कर लें तो हम दिल्ली में जो यानी माशरे में बदअमनी है और इतना ज्यादा यानी बहुत ही बदम कैपिटल कहा जाता है औरतों के लिए, हम उसको तभी कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा हंगामा हुआ कि तो औरतों की आज़ादी क्या मतलब, इससे पहले सारी औरतें कैद हुआ करती थी जब वो ढंग के लिबास मतलब यानी उस तरह के लिबास पहनती हैं जो बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं होते थे। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपना लिबास आपने पहन लिया, आपने अपनी आज़ादी का नाम उसको दे दिया, लेकिन जिसकी नज़र पड़ रही है वो अगर वो अपनी नज़रें बचाना चाहता है कितना बचाएगा, और अगर नजर नहीं बचती मतलब मान लीजिए कि वो नहीं देखना चाहता लेकिन नजर पड़ती है, उसके बाद उसके अंदर जो जज्बात जो फीलिंग जो चीज पैदा होगी वो अगर उसकी वो जिसे कहते हैं जिस्म की मांग या कुदरती तौर पर जो उसमें कैफियत पैदा हुई है उसको ठंडा होने का अगर कोई तरीका नहीं मिला तो फिर वो बदअमनी की शक्ल फिर वो हर जैसे लड़कियां गुजर रही हैं और इस तरह की औरतें गुजर रही हैं इस तरह के लिबास में, और मर्द अगर उसी तरह से पाबंद है उसका कि वो नहीं देखना चाहता, लेकिन किस हद तक, जब हर तरफ वही है तो भी देखेगा भी तो शरीफ भी होगा, और अगर शरीफ नहीं है तो फिर जाहिर है कि बदअमनी दो तरफा, एक तरफ बदअमनी की वजह मौजूद है और दूसरी तरफ बदअमनी फैलाने वाले मौजूद हैं, तो बदअमनी तो इस तरह फैलेगी। इसीलिए कहा गया है कि लिबास में भी एतदाल रखें, वो जो कैफियत होती है कि जो बिल्कुल मतलब दस्ताने भी पहने हुए हैं और ये बुरा नहीं है ये, लेकिन आपको मुआशरे को देख के और दुनिया को देख के उसको बैलेंस करना होगा, उसमें इतिदाल पैदा करना होगा कि अगर मुआशरा पूरा उस तरह कबूल नहीं कर रहा है तो मुआशरा जिस तरह आप लिबास पहने हुए हैं ये तो यानी पूरा हिजाब भी है, ये
इस्लामी हिसाब से
इस्लामी यहाँ से पूरा हिजाब भी है, और इससे जो सामने आपको देखेगा उसको पता है कि आपकी ये हुदूद हैं, इन हुदूद से आगे वो आपके लिए कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो औरत का लिबास ये बता देता है कि वो किस हद तक दूसरे को आजादी दे रही है और किस हद तक वो खुद अपने आप को आजाद महसूस कर रही है
जी।
किस तरह, तो यही जज्बा, यही एहसास जो है, इसी यही बदमनी को कंट्रोल कर सकता है और यही बदमनी की सारी हुदूद को तोड़ के और बेइंतहा बदमनी इससे फैल सकता है।
अच्छा, यहाँ पे आपने बात की कि जैसे वही बात हुई थी, इस पे जो है बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ कि औरतें अपने को इधर कंट्रोल करें, फिर उधर जो है लड़कों पे भी बात आ जाती है कि उनको भी जैसे कहाँ तक कंट्रोल करें, लेकिन उन्हें भी इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बचपन से कि कहते हैं कि तो लड़के हैं।
जब घर में आपके वो माहौल है, चाहे वो गैर मुस्लिम भी हों, जब एक शराफतमंदाना माहौल होता है,
तो
जब लड़का घर में देखता है कि माँ और बहनें और ये लोग दूसरों का इस तरह लिहाज करते हैं, तो फिर वो जब किसी और के घर में जाएगा तो फिर वो लिहाज करेगा
जी।
फिर वो लिहाज करेगा, तो लड़की ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने लड़कों को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया है और लड़कियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी।
ये
लड़कों पर भी बल्कि उससे ज्यादा पाबंदी आयद होती है, और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि वो लिखा होता है कि औरतों की जो मतलब यानी बेहूदगी मर्दों की बेगैरती की निशानी होती है। मैं शर्मिंदा हूँ ये कह के, लेकिन हकीकत यही है कि होता यह है कि माहौल में बच्चे जब खराब हो रहे होते हैं तो लड़कियां भी खराब होती हैं।
तहजीब व तरबियत और जो है बचपन से शुरू होती है, तो हम लिबास की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की पोशाक, किस तरह का लिबास बच्चों का होना चाहिए शुरू से?
देखिए, मैंने शुरू में ये कहा कि सबसे पहली चीज जिस पर इस्लाम ने बहुत ज्यादा जोर दिया वो एतदाल है
जी।
एतदाल है यानी हद से ज्यादा ना बढ़ें आगे और ना हद से ज्यादा पीछे रहें। बच्चों के लिबास के सिलसिले में भी ये है कि ऐसा लिबास ना पहनाए कि जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाए, कि आप वो उसको बिल्कुल छोटे बच्चे को मजाक में उसको स्कार्फ पहना देना, बिल्कुल जैसे 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, बच्ची है, तो उसको कर देना वो एक वक्ती मजाक तस्वीर लेने के लिए, ऐसे ही एक अलग चीज है, लेकिन ये कि हम अभी से आदत डाल रहे हैं वो उस वक्त कोई आदत वादत नहीं पड़ती है बच्चे की, वो अपनी तफरी अपने अच्छा लग रहा है बच्चा उस शक्ल में, इसलिए आप करते हैं। उसको एक हद में रखें और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो मेरे जहन में हमेशा से ये रहता है कि बच्चे को आप अपना जायज़ा लेना सिखाएं। कैसे? रात को बच्चे को माँ लेटाती है अपने साथ, बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, इससे पहले तो फजूल होता है, यानी उसमें आप अल्लाह रसूल सिखा लें वही बड़ी चीज़ है। तो आपने जिस उम्र से बच्चे से आप बात करती हैं वो कहानी सुनना पसंद करने लगता है, उसमें आप उससे बच्चे सवाल करें, आज तुमने दिन भर में क्या क्या किया, कौन कौन सी शैतानियाँ की, कौन कौन से अच्छे, अच्छा फला चीज़ पढ़ी थी, अच्छा फला का कहना माना था, छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद उसमें देखिए एक चीज़ आपको और मैं जल्दी में बता दूँ, वक्त मुझे यकीन है कि बहुत कम है, कि बच्चों को मैं अभी जो जदीद तरीन साइंस है उसमें ये अभी जो तहकीकात हुई इससे पता चला है, चंद साल पहले की बात है, कि लड़कियों में 3 साल 3.5 साल की उम्र में गलत और सही, गुनाह और सवाब, गुनाह और अच्छी बात, इसका फ़र्क उसमें पैदा हो जाता है, उससे तमीज़ आ जाती है अगर माहौल नहीं वो हो समझदार माहौल, वो समझ जाए। इसीलिए 9 साल की उम्र से वाजिब किया गया है उस पर सब कुछ, कि 9 साल की उम्र आते आते लड़कों में ये चीज़ देर में आती है,
अच्छा।
लड़कों में ये समझ, इसकी सही और गलत की समझ देर में आती है। तो उसके लिए अगर बच्चे को शुरू से आपने उसको अपना जायजा लेना सिखाया, तो फिर उसके बाद आज तुमने झूठ तो नहीं बोला, सोचो आज तुमने सच बोला, आज तुमने फला काम किया, तो बच्चे को जो शुरू में आप छोटे छोटे आपके ये सवालात होंगे उसे अपना जायजा लेना आ जाएगा, उसके बाद अपने सवालात को आप या वो उसमें खुद ये थोड़े अरसे के बाद ये जज्बा पैदा होगा कि रात को जब वो लेटे तो वो अपना जायजा ले कि आज हमने क्या किया
जी।
आज हम फला जगह गए तो हमें लोगों ने किस नजर से देखा
जी।
उसमें धीरे धीरे खुद ये जज्बा, ये जायजा जो है ये बच्चे की बड़े की हर एक के, हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम अपना जायजा लें, और अगर बचपन से ये आदत हो तो फिर बहुत ज्यादा मदद मिलती है इस्लामी तालीमात को आगे बढ़ाने की, बच्चे को एक शख्सियत देने की, एक ठोस शख्सियत देने की, और जब ठोस शख्सियत मिल जाती है तो फिर ऐसे बच्चे किसी एहसास कमतरी का शिकार हुए बगैर उन उसूलों को अपनाते हैं जो उनके मजहब ने, उनके दीन ने और उसके बाद उनके खानदान ने उन्हें सिखाए।
हमारे पास एक मिनट का वक्त है, अगर आप कुछ और इजाफा करना चाहती हैं, मैंने आपसे ना पूछा,
बस यही कि मतलब बच्चों पर आप कभी दबाव ना डालें। आपने टेलीविजन बिल्कुल घर में बैन लगा दिया है, उसको बिल्कुल वो नहीं देख सकता, फिल्में आप कभी भेजें ही नहीं, ये ना करें कभी भी,
फिर ये ना चुपके दे,
फिर वो चीजें आपकी मर्जी के बगैर करेंगे या बाहर वालों के उसमें आ जाएंगे, जरे असर आ जाएंगे। आप जो है इन चीजों हर चीज को एतदाल में रखें तो वो इतना बुरा नहीं होगा, मतलब यानी आप जितना समझ रहे हैं जमाने को, जमाना उतने बुरे असरात आपके घर और आपके बच्चों पे नहीं डाल सकेगा। कभी कभार फिल्म भी देख लें, कभी कभार टेलीविजन जो आपके यहाँ का है वो भी देख लें, लेकिन उनमें जहां गलतियां हों वहां बच्चे को ये बताएं कि ये चीज जो टेलीविजन में है ये गलत है और ये फिल्म में जो है।